चरित्र मोक्षम नाम लेक्चर नंबर 20। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार सपनासार ग्रंथ की रचना की है और पंडित टोडरमल जी ने उसके आधार से सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार सपनासार ढूंढारी भाषा में लिखा हुआ है और उसका हिंदी अनुवाद यहाँ हम देख रहे थे। नवे गुणस्थान के अंत में जब लोभ वेदक काल शुरू हो जाता है उसके दो भाग होते हैं, पहला अर्धभाग और द्वितीय अर्धभाग। प्रथम अर्धभाग में तो वही उपशमनाई का वगैरह कार्य चलता है, तीनों लोभ का उपशमने का कार्य चलता है और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन लोभ तीनों ही उपशमित हो रहे हैं और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का कुछ संक्रमण भी चल रहा है संज्वलन लोभ में। इस तरह से पहला अर्धभाग बीत जाने पर द्वितीय अर्धभाग में ये बात तो चलती रहती, उपशमने का कार्य तो चल ही रहा है और क्या कार्य होता है वहाँ पर, तो जो द्वितीय स्थिति में जो परमाणु पड़े हैं जो उपशमित नहीं हुए हैं उनका सूक्ष्म पुष्टि करने का कार्य यहाँ पर होता है। इसलिए इस जीव को पुष्टि कारक जीव कहते हैं, पुष्टि करने वाला। जब दसवें गुणस्थान का समय आएगा तब उसको पुष्टि वेदक कहेंगे, यानी वो पुष्टियों की फिर रचना हो जाएगी, वो नीचे पहले स्थिति में आएगी उसका उदय शुरू होगा। अब नहीं, अब तो केवल इसका पुष्टि करने का कार्य द्वितीय स्थिति में चल रहा है। ये पुष्टि क्या है और ये क्या है इसकी बात अभी हम फिर थोड़ी दोहराते हैं, तो इसके लिए हमें स्पर्धक वर्ग वर्गना का फिर दोबारा थोड़ा हम देखते हैं क्या है उसको। हमने देखा था अभी तक संसार अवस्था में जो बंद होता है या सत्ता में पड़े हैं तो स्पर्धक रूप से अनुभाग को स्पर्धक रूप से कहने में आता है। तो स्पर्धक का अर्थ क्या है, तो पहले में पहले देखते कि जो प्रत्येक कर्म परमाणु है वो अपनी अपनी शक्ति से युक्त है। अब यहाँ तो हम लोग की बात करें, हर एक की अपनी अपनी शक्ति अपनी अपनी है, उसके अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं, वो उसका यूनिट है, शक्ति का अंश है, उन अंशों में उस शक्ति को बताते हैं। जैसे अनुभाग को बताने वाले वो शक्ति के अंश है तो उसको गिनने का तरीका क्या है, अविभाग प्रतिच्छेद। तो ये अविभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं, तो हम कहेंगे वो तो जघन्य स्पर्धक या जघन्य मिनिमम अनुभाग से लेकर जो मैक्सिमम अनुभाग तक अलग अलग, जो अनंत परमाणु है उसमें अलग अलग अनुभाग वाले परमाणुओं के हम ग्रुप्स बनाएंगे तो उसको कहेंगे समान अविभाग वाले जितने परमाणु है उसको हम एक लाइन में आड़ी लाइन में बताएंगे, उसको कहेंगे वर्गणा। उससे एक अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें ज़्यादा है उसको कहेंगे दूसरी वर्गणा, वो पहली वर्गणा थी, नीचे की पहली वर्गणा। नीचे की वर्गणा में वर्गणा कह रही हूँ, निषेक नहीं, यहाँ स्थिति से कोई मतलब नहीं, सभी स्थितियों में सभी निषेकों में सभी वर्गणा सभी स्पर्धक सभी पड़े हुए होते हैं। तो ये सबसे नीचे की वर्गणा उसको पहली वर्गणा या जघन्य वर्गणा कहेंगे, उससे दूसरी वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद एक ज़्यादा है, तीसरे में और एक अधिक और एक अधिक और एक अधिक, एक एक से बढ़ते हुए अनंत वर्गणाएं होती है, तब तक एक ही स्पर्धक है, बाद में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें गैप पड़ता है। पहली वर्गणा में जितना अविभाग प्रतिच्छेद था ना वो अनंत में है, हमने 100 माना था तो वो डबल होकर जहाँ दूसरा 200 वहाँ से फिर वर्गणा चालू होती है, एक एक के डिफरेंस से 200 201 203 204, हमने मान ली थी 100 से लेकर 120 वैसे 200 से लेकर 220 तक मानो ना समझने के लिए, तो 100 से लेकर 120 तक इतनी सारे वर्गणाओं के ग्रुप को हम पहला स्पर्धक कहेंगे, 200 से लेकर 220 तक दूसरा स्पर्धक। ये समझने के लिए छोटी संख्या बता रहे हैं, 300 से लेकर 320 तक अलग अलग वर्गणा में तीसरा स्पर्धक, जो नंबर ऑफ स्पर्धक होगा उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस तरह से होगा, 9वां स्पर्धक है तो उसकी पहली वर्गणा में 900 अभिभावक है, क्योंकि हमने 100 माने थे ना पहले। इस तरह से ऐसे स्पर्धक पाए जाते हैं। ये अविभाग प्रतिच्छेदों में भले बीच में गैप है, क्योंकि 120 तक थे अविभाग 6 थे, 121 वाला कोई परमाणु नहीं था, ना ही 199 तक का कोई परमाणु था। अविभाग के प्रतिच्छेद की अपेक्षा बीच में गैप है, पर वर्गणा 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 के प्रति परमाणुओं की संख्या घटती चली जाती। वो 120 वाला जो वर्गणा थी उसके ऊपर हम 200 वाली वर्गणा रखेंगे तो उसमें उतने ही तीन जो समान चय से ही इतने ही परमाणु संख्या पाई जाती, यानी वहाँ भले अनुभाग में गैप है परंतु जो उसमें चय घटता क्रम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यानी ऊपर जो सभी वर्गणा जैसे दिखाई हमने, सारी वर्गणा सभी स्पर्धकों की सभी वर्गणा एक के ऊपर हम एक रखेंगे तो उसकी ऐसी रचना होती है। शास्त्र में इसको गोपुच्छ कहते हैं, गाय की पूंछ टेपरिंग होती है तो ये टेपरिंग होता है, ये इनकी परमाणुओं की संख्या घटती चली जाती है, नीचे की पहली वर्गणा ऊपर 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 अंतिम वर्गणा, ये सारी वर्गणाओं के सारे स्पर्धकों की सारी वर्गणाओं के ऊपर हमने एक के ऊपर रच कर ऐसे रख दिया तो वो कैसी दिखेगी, परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा इस तरह से घटते हुए दिखाई देंगे, इसको कहते हैं गोपुच्छ। स्थिति में भी ऐसा होता है, ये अनुभाग की बात चल रही है, बारम्बार में ये स्थिति और अनुभाग की कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ कि वहाँ स्थिति में ही हम ऐसा इमेजिन करते कि नीचे ज़्यादा है या नीचे कम है ऊपर अधिक, ऐसा वहाँ नहीं है। प्रत्येक निषेक में ऐसे ऐसे वर्गणाओं की रचना होगी, रचनाएं हम समझने के लिए रचना कह रहे हैं, वहाँ कोई ऐसे परमाणु आगे पीछे जंपिंग नहीं करते हैं, हाँ कुछ नहीं करते, बस उसमें क्या क्या पाया जाता है उसको यहाँ बताना है। अब हम ये कृष्टि होती है ना क्या होती है उसकी बात हम थोड़ी देखेंगे, पहले समय में कितनी कृष्टि होती है, दूसरे समय में कितनी कृष्टि होती है पढ़ेंगे, फिर बोर्ड पर भी देखेंगे। देखो यहाँ तो हमने 193 पेज पर 284 के ऊपर जरा देखना, नीचे से कौन सी लाइन में आपको बताते हैं, नीचे से छठी लाइन, द्वितीय स्थिति में अभी बादर लोक का जो उपशमित नहीं हुआ है वो द्रव्य जो पड़ा है उसकी अभी सूक्ष्म कृष्टि बनेगी, तो वहां लिखा है द्रव्य को अपकर्षण करके, द्रव्य को अपकर्षण यानी परमाणुओं के अनुभाग को घटाकर, अपकर्षण यानी यहाँ स्थिति की अपेक्षा नहीं समझना, अनुभाग की अपेक्षा अपकर्षण करके अनुभाग की सूक्ष्म कृष्टि करता है, करता है क्या करता है, जघन्य स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में यानी लोअर मोस्ट जो वर्गणा थी अनुभाग की अपेक्षा, जो लोअर मोस्ट हमें पहली वर्गणा बताई थी उसमें लता समान अविभाग प्रतिच्छेद है, उसके नीचे उनसे भी अनंत गुणाहीन अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेद रूप सूक्ष्म पुष्टि होती है। तो पहले समय में सूक्ष्म पुष्टि हुई तो कितनी होती है, पहले एक स्पर्धक में जो वर्गणाओं का प्रमाण, हमने 100 से लेकर 120 तक 20 माने परंतु होती कितनी है, अनंत होती है, तो एक स्पर्धक में जितनी वर्गणा होती है उसके अनंतवे भाग प्रमाण, उन सूक्ष्म पुष्टियों का प्रमाण जानना, एक समय में इतनी पुष्टियाँ बनी, और पुष्टियों का अर्थ क्या है, एक से दूसरी दूसरी से तीसरी के अनंत गुणा का डिफरेंस है, वर्गणा वर्गणा के प्रति एक अविभाग प्रतिच्छेद का डिफरेंस था और यहाँ अनंत गुणा का डिफरेंस है, यानी ऊपर से हम नीचे की ओर देखेंगे तो पहली पृष्ठी से नीचे दूसरी पृष्ठी अनंतवे भाग प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद, उसका अनंतवा भाग उसके नीचे, उसका अनंतवा भाग जितनी अनंत पृष्ठि बनेगी तो अनंतवार अनंतवा भाग घटेगा, यानी कितना घटेगा ये आप इमेजिन कर सकते, यानी इतना सूक्ष्म उसका अनुभाग हो जाता है, इसको कहते हैं सूक्ष्म पृष्ठि। इससे पहले पहले ने अब तक इससे पहले ना अभी तक अंतर्मुख काल में निष्पन्न हो ऐसा अनुभाग कांडक घात होता था। यानी वहाँ क्या होता था, अनुभाग कांडक घात में पहले समय, दूसरे समय, तीसरे समय करते करते ऊपर की जो अधिक अनुभाग वाले कर्दक वर्गना थी उसका घात होकर वो नीचे के वर्गना के समान हो जाता। जैसे हम स्थिति कांडक घात निषेकों में देखे थे, ऐसे अनुभाग कांडक घात यहाँ वर्गनाओं में हो रहा, पर उसके लिए एक अंतर्मुख लगता है। यहाँ ये जो घटने का कार्य प्रति समय हो रहा है, वहाँ एक एक अंतर्मुहूर्त में अनुभव का घटना होता था, और यहाँ जो घटना है और नीचे कृष्टि रूप रचना है वो प्रति समय हो रही है। जितनी पहले समय में कृष्टि हुई दूसरे समय में उससे भी नीचे, उसके भी अनंत विभाग प्रमाण अनुभव वाली और नई कृष्टियाँ हो जाएगी। ये कृष्टि करने का कार्य अंतर्मुहूर्त कैसा ही चलेगा, नई 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 कृष्टियाँ बनती चली जाएगी। अब इसी को यहाँ पढ़ते हैं। हाँ, उसी से खुशी, पर वो अनंत वा भाग अनंत गुणाहीन का अर्थ है वो जघन्य वर्गना से भी अनंत वे भाग प्रमाण अनुभाग बनता है। यानी अनुभाग इतना घटता है, अनुभाग का घटना अभी तक इतना कभी नहीं हुआ था कि जो पूर्व अभी कोई भी संख्या ले उसका अनंत वा भाग करके फिर उसका अनंत वा भाग करना है। अब करोड़ों ले लो फिर उसका अनंत वा भाग करने के लिए क्या कहेंगे, लाख, लाख का अनंत वा भाग एक।
यानी कि लाख घटाकर,
घटाकर नहीं, लाख वा भाग डायरेक्ट। अभी वो अनंत वे के बदले आप दसवा भाग भी ले, दसवा भाग भी ले, तो करोड़ का दसवा भाग कितना होगा, दस लाख, दस लाख का दसवा भाग एक लाख, एक लाख का दसवा भाग, समझ में आई ना, इस तरह से अनंत अनंत भाग। अनंत के लिए हम दस गिन रहे, अनंत यानी कितना अधिक होगा, अनंत वा भाग यानी वो अनुभाग कितना घटेगा आप इमेजिन करो। वर्गना वर्गना के प्रति एक अविभाग प्रतिशत डिफरेंट था, और यहाँ अनंत गुणा का बात, अनंत गुणा की बात, बहुत फर्क। देखो यहाँ जरा पढ़ लेते फिर मैं बोर्ड पर भी बताऊंगी। पेज नंबर 194। ये सेकंड पैराग्राफ पर पढ़ते हैं। पूर्व स्पर्धकों के जघन्य वर्ग में, जघन्य वर्ग का अर्थ है जघन्य वर्गना में जो जो एक एक सिंगल परमाणु था उसमें अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेदों का जो प्रमाण है, हमने देखा था जीव राशि से अनंत गुणा इतना उसका प्रमाण था, उसको कृष्टि आयाम का जो प्रमाण है, कृष्टि आयाम में नंबर ऑफ कृष्टियाँ कितनी बनी उसको कृष्टि आयाम का, वो कृष्टि कितनी बनी, तो जो एक स्पर्धक में जितनी वर्गना है उसके अनंत विभाग प्रमाण बनी उसको पुष्टि आयाम कहा। मान भी लेते ना दस पुष्टियां बनी, मानने के लिए यदि दस पुष्टि बनती है तो दस बार अनंत का भाग देना, क्योंकि वर्गणा से अनंत एक बार अनंत का भाग देंगे कि ऊपर की दस नंबर की पुष्टि यानी ऊपर की हुई लास्ट ऊपर, और उसका अनंत का भाग देंगे तो नीचे की पुष्टि हो, उसका अनंत का भाग उसके नीचे की पुष्टि, ऐसे जितने कृष्टि का आयाम है जितनी कृष्टियाँ बनेगी उतनी बार अनंत 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 का भाग देते जाओ, जो प्रमाण आता है उतने प्रथम कृष्टि में अनुभाग के अविभाग प्रतिच्छेद। ये समझ में आती है, मैं पढ़ूंगी इतना पैराग्राफ फिर बोर्ड पर देखूंगी। द्वितीयादि कृष्टियों में क्रम से अनंत गुणा है, यानी जो हमने डायरेक्ट दस बार अनंत का भाग देकर नीचे की पुष्टि बताई उसकी ऊपर की पुष्टि एक बार अनंत गुणा, उसके ऊपर उससे अनंत गुणा, उसके ऊपर उससे अनंत गुणा, इस तरह से ऊपर तक आ जाना। तो कहते एक कम पुष्टि आयाम मात्र बार अनंत से गुणा करने पर अंत पुष्टि में वे अविभाग प्रतिच्छेद पूर्व स्पर्धक के जघन्य वर्ग के अनंत वे भाग मात्र है, इस तरह प्रथम समय में की हुई सूक्ष्म पुष्टि है। अब इसको जरा बोर्ड पर देखेंगे हम, ये वर्गना और पुष्टि क्या है उसकी बात जरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ ये जब ड्राइंग बनाया है वगैरह है, यहाँ वो प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति से कुछ मतलब नहीं है, ये सब कर्तव्य है जो द्वितीय स्थिति में पड़ेंगे, जो परमाणु है, जो बादल लोग के यहाँ परमाणु पड़े हैं उसकी बात है यहाँ पर। ये सारी वर्णना है, ये चैतन्य वर्णना जिसको हम कलि वर्णना कह रहे हैं, इसमें अधिभार प्रतिशत सबसे कम है। अभी तक जो सत्ता में पड़े हुए सभी जो परमाणु है, जो सभी अभिभाव अनुभव बताने वाले हैं, उसको अदर सूत्र की वर्णना उससे करे, इससे कम अनुभव वाला कोई एक भी परमाणु सत्ता में नहीं था अब तक की बात। अब क्या हो गई, जगन्य जो अभिभाव प्रतिशत वाली जो जगन्य वर्णना है, इससे ये दूसरी एक अभिभाव प्रतिशत ज्यादा हो जाता तीन ज्यादा इस तरह से। और जैसे मान लेते हैं 100 से 120 तक हुए, फिर 200 से 220 तक हुए, 300 से 320 तक हुए, फिर एक स्कंदन दूसरा स्कंदन, ऐसे अनंत स्कंदन पड़ेंगे ऊपर। अब इनमें से क्या होगा, अभी पुष्टि करनी है, पुष्टि तैयार होनी है, तो सभी में से थोड़े परमाणु निकल जाएंगे, ये सभी में से थोड़े परमाणु की इनका अनुभव घटेगा। अभी लता वाले ही स्थिति सत्ता में पड़े थे, आप चारों प्रकार के तो मिथ्या दृष्टि के थे, यहाँ केवल लोग बचा है और वो भी इतना अंत हुआ, उसका अभिभाव हमें हमें घटते हुए देखा है। अभी सभी में से कुछ परमाणु निकले, इनका अभिभाव प्रतिशत जो था अपने अपने से घटता हुआ, अब क्या हुआ उसमें से कुछ तो पुष्टियाँ बनेगी और कुछ तो द्रव्य यहाँ पर भी दोबारा दिया जाएगा, क्योंकि उसका अपना अपना अनुभव घटकर यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सब में से निकले उसका अभिभाव प्रतिशत अपने अपने ओरिजिनल से घटा, कुछ तो पुष्टि रूप से हुआ, पुष्टि रूप से नहीं यहाँ वर्णन रूप से, तो ये कहीं ऊपर की पुष्टि है। अभी यहाँ पुष्टि एक दो तीन चार पाँच रूपये पांच पुष्टि बनी, तो पांच बार अनंत का भाग है, वर्णना के एक बार अनंत का भाग देंगे तो इसके अनुभाग है, उसके अनंत के भाग में इसका अनुभाग, उसके अनंत के भाग में इसका, इसका नहीं उसके प्रत्येक परमाणु का, उसके अनंत के भाग इसका, उसके अनंत के भाग इसको एक नंबर की दृष्टि बने, तो इसको हमें एक दो तीन चार पांच बार अनंत का भाग देगा, तो ये वही पुष्टि, इसमें परमाणु ज्यादा, उसको अनंत गुना दूसरी पुष्टि, अनंत गुना तीसरी, अनंत गुना चौथी, अनंत गुना पांचवी, एक दो तीन चार बार अनंत का भाग दिया और इससे अनंत गुना वर्णना हो। ऊपर से देखिए इसको अनंत में भाग करेंगे, नीचे से कहेंगे अनंत गुना चौथी, तो पहले समय में इतनी नंबर ऑफ पुष्टि बनी, कितनी बनी, एक स्पर्धक में जितनी वर्णना थी उसके अनंत में भाग करना पड़ी। तो इसमें जहाँ तो नीचे की वर्णना में परमाणु ज्यादा से ऊपर रखते थे, जब पुष्टि तैयार होगी तो उसमें भी परमाणु इस तरह से ही ज्यादा होगी, जो वस्तुशाला रचना हमेशा ही दिखाई देगी, हमेशा इसी पद्धति से रचना होगी। इसके बाद दूसरे समय में और पुष्टियाँ बनेगी और कितनी बनेगी, जहाँ जितनी बनी उसके असंख्या भाग परमाणु बनेगी, कम बनेगी, कम बनेगी परंतु उसका अभिभाव प्रतिशत कितने होंगे, उसके भी अनंत में भाग, अरे सेकंड अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट समय है उसमें कैसी पुष्टि बनेगी, इसके अनंत में भाग परमाणु यहाँ नीचे चली जाएगी पुष्टि बनेगी, उसका अनंत भाग ये हुआ, उसका अनंत भाग ये हुआ, उसका अनंत भाग ये हुआ, इससे कम पुष्टियाँ बनेगी, पर इसका अनुभाव इतना कम है, इसमें प्रदेश और ज्यादा है। कुछ जो पहले समय में थे कुछ परमाणु का ऐसे बने, कुछ परमाणु इसके समान अभिभाग वाले यहाँ दिए गए, कुछ परमाणु ऐसे भी थे जो वर्णना दूसरे रहे वो भी यहाँ दिए गए, ये ऐसा ही जो इसमें से सब में से परमाणु पुष्टि रूप हो गए, कोई अपूर्ण पुष्टि रूप हो जाएगी, कोई पूर्ण पुष्टि रूप हो जाएगी, कोई नीचे की वर्णना रूप हो जाएगी, सबकी सब पुष्टि रूप नहीं होगी, इस तरह से उसका अनुभाग अपने अपने पूर्व अनुभाग से करता जाएगा, हर समय ऐसी ऐसी रचना हो जाती है। ये सारा जो पुस्तक में उसके ड्रॉइंग बनाए, मैंने पहले समय में इतना अनुभव हुआ तो दूसरे समय में बहुत ज्यादा परमाणु इसमें आ गए, तो इसको इस तरह से बताते हैं, ये पूर्व पुष्टि थी इतनी, ये पूर्व पुष्टि थी, अब कुछ परमाणु सेकंड समय में इस रूप से हुए और कुछ तो यहाँ पर भी द्रव्य दिया गया, इधर भी द्रव्य दिया गया, तो ये कैसे निकालना उसके लिए बहुत सारे फिगर, इसका हमको एग्जैक्ट प्रमाण निकालने के लिए गणित के लिए उन्होंने कहेंगे यहाँ भी इतना दिया, फिर यहाँ इतना सामान मुझसे दिया, फिर इधर ऐसा ऐसा दिया और फिर इसको अंदर मंदिर के अलग अलग अनेक नाम है, वो सारे पेजेस हम छोड़ कर आगे बढ़ने वाले हैं। वो केवल हिसाब करने का तरीका है, पर फाइनल पिक्चर ऐसे रही, ये मेरे पहले समय वाले और ये सारा जो है मान लेते हैं ये सारे ये दूसरे समय, तीसरे समय में क्या होगा उससे आगे और नई स्थितियाँ नीचे बनेगी, तो वो इस तरह से देखिएगा आगे ये तीसरे समय में, चौथे समय में और आगे चला जाएगा, ये इस तरह से देखिएगा, यानी इस तरह से वो ऊपर तक देखते चला जाएगा, यानी ऊपर ऊपर के घटकर ये नीचे नीचे पहले समय वाली शुरू होती थी, दूसरे समय वाली अब शुरू होती, इस तरह से ये बात चलेगी। बीच वाले ये सारे फिगर से वो भी हम नहीं देखेंगे और उसमें यही बात बताएंगे, तो आचार्य ने उसके अलग अलग पार्ट करके उसका प्रमाण कैसे निकालना उसके लिए कुछ उसने फिगर्स में बताया, उसकी बात हमें नहीं देखनी है, वो केवल किस तरह से कृषियाँ होती है, रचना होती है, उसी बात आपको देखनी है, फिर आगे में कृषियों का क्या हुआ वगैरह की चर्चा हम करेंगे, पुस्तक के आधार से लिखते आपको अगर वो देखना है फिगर 197 पर और 199 पेज पर जो फिगर्स है ना उसमें यही बताया है पूर्व पृष्ठि और अपूर्व पृष्ठि, उसमें पूर्व पृष्ठि में कैसे था और उसमें अपूर्व पृष्ठि में और क्या क्या द्रव्य दिया और उसको उसका प्रमाण निकालने के लिए अलग अलग नाम है वो सब छोड़ देना है अभी हमको, अभी हम डायरेक्ट जाएंगे आगे 204 पेज पर, यानी बीच में पहले समय में क्या हुआ दूसरे समय में क्या हुआ वो कहाँ कितना द्रव्य दिया जाता है क्या क्या होता है इसी की बिल्कुल विस्तार से चर्चा है जिसको हमने शॉर्ट में अभी बोर्ड पर देखा है। पेज नंबर 204 ये यहाँ से जरा देखते हो वापस चलो 203 पर हाँ देखो ये नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह द्वितीय समय में विधान किया। द्वितीय समय में विधान हमने पुस्तक से नहीं पढ़ा है बोर्ड पर आपको दिया दिखा है। पहले समय में जितनी पुष्टि बनी थी दूसरे समय में उसके असंख्या विभाग प्रमाण नई नीचे ही पुष्टियाँ बनी जिसका अनुभव और अनंत गुना घटता हुआ था और उसी समय कुछ द्रव्य से तो पुष्टियाँ बनी और कुछ द्रव्य तो पूर्व पुष्टियों समान अविभागे ने उसको साइड में दिया ऐसा हम कहेंगे और कुछ तो नीचे की वर्गणाओं के समान उसका द्रव्य वहाँ पर दिया जो हमने यहाँ बोर्ड में दिखाया था इस तरह से वहाँ रचना होती चली जाती है। कहते हैं जिस तरह द्वितीय समय में विधान कहा उसी तरह पुष्टिकरण काल के तृतीय से लेकर अंत समय तक ये नवे गुणस्थान के लोक वेदक के सेकंड हाफ में क्या क्या बातें हो रही है प्रति समय ऐसी पुष्टियाँ बनने का कार्य चल रहा है। अंत समय तक के समयों में क्रम से असंख्यात गुणा द्रव्य को आकर्षण करके पहले समय में जितने द्रव्य से जितने परमाणुओं की पुष्टि बनी दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा परमाणुओं की पुष्टि बनी, पुष्टियों की नंबर ऑफ पुष्टियाँ कम बनी और उसमें नंबर ऑफ परमाणु अधिक किए गए कि नीचे नीचे की पुष्टियाँ कितनी बड़ी है आप इमेजिन कर सकते हैं पूर्वोक्त प्रकार से निक्षेपण करता है। इस प्रकार बादर लोक वेदक काल के द्वितीय अर्धमात्र रूप सूक्ष्म पुष्टि करने का काल व्यतीत हुआ। ये जो द्वितीय हाफ है उसमें बादर लोक का उदय चल रहा है और सूक्ष्म पुष्टि करने का कार्य चल रहा है, इतनी बात ख्याल में आई, यानी उसी काल का मेरी भाषा में लिखा बादर लोक वेद काल का द्वितीय अर्धमात्र काल सूक्ष्म पुष्टिकरण काल है। परंतु वो सूक्ष्म कृष्टि कहाँ पर की? द्वितीय स्थिति में बना है। जैसे अभी वो शपक श्रेणी की उदाहरण दिया, अपन वो तो हमें मालूम नहीं सर शपक श्रेणी की। यहाँ सेकंड लाइन लेते, विशेष इतना है, यहाँ पूर्व स्पर्धक के असंख्यात वे भाग मात्र ही द्रव्य का ग्रहण कर सूक्ष्म वृष्टि करता है, अवशेष द्रव्य अपने स्वरूप रूप रही रहता हुआ उपशमित होता है। हमने देखा था बादल लोग अपने रूप से उपशमित होता गया था, आधे काल तक तो उपशमित हुआ, बाद में भी उसका उपशम तो चालू ही था, और बाय द बाय कुछ परमाणु का सूक्ष्म वृष्टि रूप करने का कार्य। ये टोटल बादल जो लोग के परमाणु थे उसके असंख्यात भाग परमाणु की ही सूक्ष्म वृष्टि बनी, ये उसका अर्थ है। अब 291 की टीका, संज्वलन लोक की प्रथम स्थिति का द्वितीय अर्धमात्र जो पुष्टिकरण काल, इसका अर्थ भाषित होता है कि नहीं ये देखो, फर्स्ट हाफ में तो बादल लोक का उदय ही उदय था, पुष्टि नहीं की थी, सेकंड हाफ में बादल लोक का उदय चल ही रहा था और पुष्टि करने का कार्य चल रहा था। तो नौवे गुण स्थान का लास्ट पोर्शन है ये, हाँ 390 भी दिया था, 309 का बाद, हाँ 9 का बाद उसको, अभी 309 में से भी संख्या बहुभाग व्यतीत होने पर अंत समय में मत लिखो, अंत में संज्वलन लोक का अंतर्मूर्त मात्र और तीन भांति कर्मों का पृथक्व दिन मात्र स्थितिबंध होता है। यानी यहाँ पर जो, क्योंकि हमने देखा था एक बार स्थिति बंधावसन होने पर उतना का उतना स्थितिबंध अंतर्मूर्त तक चलता है, तो अभी अंतिम समय तक इतना ही स्थिति बंध रहेगा, यानी अंतिम बार जब बंधावसन हुआ अब नवे गुणस्थान के अंत तक ऐसा ही स्थितिबंध होगा लोगों का। यानी लोग का अंतिम स्थितिबंध कितने मिनिमम है वो, इसके बाद उसका बंध रुकने वाला है, तो ये कितना बंध होता है यहाँ पर, कितना अंतर्मूर्त। तो कहते लोग का अंतर्मूर्त मात्र, और यहीं पर तीन भांति कर्मों का कितना है पृथक्व दिन, यानी कुछ दिन स्थितिबंध होता है। अब नेक्स्ट बात, कृष्टिकरण काल का जब तक द्विचरम स्थितिबंध प्राप्त हो, यह हमने करेक्शन किया था, तब तक तीन अधिक अघाती कर्मों का स्थितिबंध यथासंभव संख्या हजार वर्ष मात्र है, तथा संज्वलन लोभादि का भी स्थितिबंध उस द्विचरम स्थितिबंध तक पूर्वोक्त प्रमाण सहित समान रूप ही जानना। यानी वो तो घटते 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 वो अंतर्मूल तक पहुंचा है, तो बड़ा अंतर्मूल से छोटा अंतर्मूल होता चला जाएगा। अभी 205 नंबर पर आते हैं, कृष्टिकरण काल के अंत में पूर्व स्थितिबंध से संख्या गुणाहीन संज्वलन लोक का अंतर्मूल मात्र। पहला तो द्विचरम स्थितिबंध बताया है और ये चरम स्थितिबंध बताया है, अंतर्मुक्त अंतर्मुक्त में जो स्थितिबंध घट रहा है उसकी बात है। तो लोक का यह अंतिम स्थितिबंध अंतर्मुक्त का है, और तीन घाती कर्मों का दिवसांत यानी दिवस से कुछ कम, और तीन अघाती कर्मों का द्विवर्षांत यानी दो वर्षों से कुछ कम स्थितिबंध होता है। ये जो उपशमक अनिवृत्तिकरण के अंत समय में स्थितिबंध कहे, अंतिम समय में ये चलता है, वो अंतिम अंतर्मुक्त में चालू हो गया था, अंत में होता है ऐसा कहो या अंतिम समय में कहो, और हमें समझना चाहिए एक एक समय का एक एक स्थितिबंध नहीं होता है। कहे वे क्षपक अनिवृत्तिकरण के अंत समय के स्थितिबंध से दो गुना है, हमने कल भी बात ये देखी थी, यहाँ पर भी अंतर्मूर्त कहेंगे और वहाँ पर भी अंतर्मूर्त, वो आधे वाला होगा, क्योंकि जहाँ हमने यहाँ 32 वर्ष है वहाँ 16 होता है, जहाँ अभी जब 8 मूर्त कहेंगे यहाँ 16 मूर्त कहेंगे वहाँ 8 मूर्त, इस तरह का डिफरेंस है। क्षपक श्रेणी में स्थितिबंध आधा होता है उसी पोजीशन पर, क्योंकि वहाँ विशुद्धि ज्यादा है। अब 294 की टीका, संज्वलन लोक की प्रथम स्थिति के द्वितीयार्ध में से एक समय कम तीन आवली अवशेष रहने पर, जैसे हमने अन्यत्र भी तीन क्रोध को उपशमाता है, तीन मान को, तीन माया को, उसमें हमने तीन आवली यानी संक्रमणावली उपशमनावली की और उच्चिष्टावली की बात की थी, ऐसे यहाँ पर भी क्या होता है, तीन आवली अवशेष रहने पर अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान लोग संज्वलन लोभ में संक्रमण नहीं करता। अब डिफरेंस क्या है, जब हम क्रोध की बात देखी थी, तीन आवली बाकी रही थी, तब वो उसका प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान क्रोध था, वो संज्वलन मान में जा रहा था। अब इसके लिए जाने के लिए कुछ बचा नहीं है, परंतु उसका वो संक्रमण तो रुक गया, तो क्या होगा उनका? तो कहते कि संक्रमण नहीं करता है, संक्रमणावली के प्रथम समय में ही संक्रमण का विश्राम हुआ, तो क्या होता है? देखो, इन दो लोग का द्रव्य स्वस्थान अर्थात अपने रूप में रहते हुए उपशमित, उपशमित तो होना है ना, ऊपर सारे परमाणु को उपशमित कर रहे, पूरा उपशम हो गया, क्या है ना। अब अन्यत्र क्या था, वो नेक्स्ट कषाय रूप से परिणाम था, यहाँ क्या होगा, अपने रूप से रहते हुए उपशमित हो गया। संक्रमणावली व्यतीत होकर वहां दो आंगली अवशेष रहने पर आगाल प्रत्यागाल की भी विच्युति हुई। आगाल क्योंकि अभी निषेक की अपेक्षा द्वितीय स्थिति में से परमाणु नीचे आते थे, उसको आगाल कहा था, वो अभी यहाँ रुक गया। प्रत्यागाल क्योंकि नवा जो बंद होता था नया संज्वलन लोक का, उसके साथ ऊपर भी जाते थे, वो भी रुक गया। अभी प्रत्यावली अर्थात द्वितीय आवली के अंत समय तक उदीर्णा होती है, यानी दूसरी आवली में से परमाणु की उदीर्णा होकर नीचे की उदयावली में आती रहती है। इनका स्वरूप पहले कहा वैसा जाना। अब देखो नीचे अभी एक आवली अवशेष रहने पर क्या होगा, बादल लोक का उदय चल रहा है और इसने द्वितीय स्थिति में सूक्ष्म लोक करके रखा है, पुष्टि करके रखा है। बादल लोक की प्रथम स्थिति में उच्चिष्टावली मात्र अवशेष रहने पर उपशमनावली के अंत समय में तीनों लोक का सर्वद्रव्य उपशम रूप हुआ, यानी यहाँ पोजीशन क्या हुई है, यहाँ एक आवली बाकी रही, उसके पूर्व आवली उपशमनावली ने लास्ट वाला, जब तक उसका उदय है तब तक उपशम चल रहा है, यानी उसके अंतिम समय में उपशम की अंतिम खाली उपशमित हो गई, सभी लोग जो उपशमित हुआ। क्या नहीं उपशमित हुआ है, नव समय प्रबुद्ध उपशमित नहीं हुआ, और उच्चिष्टावली अपने रूप से उदय में आने वाली नहीं है, ये बात बता रहे। तो कहते कि अंत में तीनों लोग का सर्वद्रव्य उपशम रूप हुआ, वहां विशेष इतना विशेष है, ये डिफरेंस है, विशेषता ये है कि सूक्ष्म पुष्टि को प्राप्त हुआ द्रव्य उपशमित नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो सूक्ष्म पुष्टि बाद में उदय में आएगी दसवें में, वो उपशमित नहीं हुए, वो बादल लोक का सूक्ष्म लोक कर दिया है, वो वही वही था सूक्ष्म लोक रूप से पड़ा है। एक समय कम दो आवली मात्र नवक समय प्रबद्धों का द्रव्य जो नया नया बंदा है वो भी अभी उपशमित नहीं हुआ है, जो दसवें वनस्थान के शुरुआत में उपशमित हो जाएगा, और उच्चिष्टावली मात्र निषेकों का द्रव्य वो भी उपशमित नहीं हुआ, क्योंकि उपशम पहले स्थिति में होता ही नहीं, वो दूसरे स्थिति में चलता है, तो इनका क्या होने वाला है, वो द्युक संक्रमण रूप से वो सूक्ष्म लोक होते होते उदय में आएगा। जब इसकी उच्चिष्टावली प्रमाण स्थिति रही तब जाके सूक्ष्म लोक के परमाणु प्रथम स्थिति में आकर उसकी गुणश्रेणी रूप से ही रचना हो जाएगी, जितने दसवें गुणस्थान का प्लस आवली प्रमाण इतना ही था, जितना दसवें गुणस्थान का काल है उतनी उसके निषेक रचना होने वाली है। अब यहाँ देखो, इस यहाँ से पढ़ेंगे, तो इतने नहीं उपशमित हुए, कौन कौन से, वो उच्चिष्टावली भी नहीं हुई, वो नवक समय प्रबद्ध नहीं हुए, और जो सूक्ष्म पुष्टि हुई वो भी उपशमित नहीं हुई, यहाँ तक बात ख्याल नहीं, ये नवे गुणस्थान का यहाँ अंत आ गया। सूक्ष्म पुष्टि सारी द्वितीय स्थिति में पड़ी है, हाँ वो उपशमित नहीं हुए, वो तो सूक्ष्म रूप होकर पड़ी है, उनको उपशमने का कार्य तो दसवें में चले, उसका उदय भी रहेगा और उसका उपशम नहीं का, वो तो अभी दसवें गुणस्थान की बात अभी आती है, तब हम उसको देखेंगे। तो 296 की टीका पढ़ेंगे, 206 पेज पर। अभी उसका सूक्ष्म पुष्टि रूप हो गया, उसको पुष्टिकरण इतना ही नाम दो, उसको अन्य नाम देने की कोशिश मत करो, यहाँ यहाँ अनिवृत्तिकरण के अनंतर प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय है, यानी ये अनिवृत्तिकरण का काल समाप्त हुआ, अब दसवां गुणस्थान शुरू हुआ, उसका नाम क्या है, सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म कषाय यानी सूक्ष्म लोक का यहाँ उदय है, इसलिए इस गुणस्थान का ही नाम सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है। वह अंतर्मोहत स्थिति वाले समस्त सूक्ष्म पृष्टि के द्रव्य को, ये सूक्ष्म पृष्टि कितने काल तक रहने वाली है, अंतर्भूत रहने वाली है, क्योंकि ये जो सूक्ष्म किया है वो फिर बादर होकर जब उलट कर नवे गुण स्थान में आएगा तो सूक्ष्म का फिर बादर हो जाएगा, इसलिए उसकी कितने काल तक वो सूक्ष्म रूप से रहने वाला है, अंतर्मुख तक, यानी वो जितना सूक्ष्म रूप द्रव्य है उसको आकर्षण भागा का भाग देकर वहाँ एक भाग मात्र द्रव्य को ग्रहण करके उसको पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर एक भाग को सूक्ष्म लोक की प्रथम स्थिति में निक्षेपण करता है। कितना भाग देता है, किसका देता है, वो कोई हमें जानने की जरूरत नहीं। जो सूक्ष्म रूप से सारे परमाणु पड़े थे उसमें से कुछ एक भाग परमाणु हाँ वो पहली स्थिति में आकर उनकी रचना हो जाएगी, उन परमाणुओं से वहाँ सूक्ष्म लोक के निषेक बनेंगे। जो नहीं थे वहाँ क्या बचा था, बादर लोक की उच्चिष्ठावली बची थी जो अभी उदय में नहीं आने वाली है, परंतु अभी सूक्ष्म लोक के द्वारा वहाँ वो रचना बनेगी, निषेक तैयार हो जाएगी। इसका प्रमाण बादर लोक वेदक काल से कुछ कम तीसरा भाग मात्र है। किसका प्रमाण, जो अभी अब कितना होगा हमारी भाषा में 301 होगा, उसकी कोई उच्चिष्ठावली रहकर अन्य रूप से उदय में नहीं आने वाली है, सूक्ष्म लोक को अपने रूप से उदय में आना है, उसके लिए अन्य कुछ अभी चारा नहीं बचा के उच्चिष्ठावली अन्य रूप से परिणाम आए, उसकी अंतिम आवली अपने रूप से ही उदय में आएगी, तब जाके वो दसवां गुण स्थान समाप्त होगा। तो अब समाप्त होगा अंतिम अंतिम की बात, उच्चिष्ठावली की बात। अब उसकी जो रचना हुई है अंतर्मूल प्रमाण, उसका प्रमाण कितने, जितना दसवें का काल है, सूक्ष्म पृष्टि के परमाणुओं से जो निषेक बनेंगे वो कितने बनेंगे, जितना दसवें का काल है उतने समय उसके उतने निषेक बनेंगे, ये यहाँ कहना चाहते हैं। फिर से देखो यहाँ पर, इसका प्रमाण लोभ बादर लोभ वेदक काल से कुछ कम तीसरा भाग मात्र है। हमने देखा था वहाँ पर, वो तो पहले का 390 था, दूसरे का 309 था, हमने समझने के लिए बनाए थे, और 301 वो उतना है। जो सूक्ष्म सांप्राय का काल है, देखो यहाँ क्या लिखा है, जो सूक्ष्म सांप्राय का काल है वही सूक्ष्म पृष्टि की प्रथम स्थिति का प्रमाण जानना। क्यों, इतना ही है वो, यह उदयादि अवस्थित गुणश्रेणी आयाम है। अब यहाँ कितना द्रव्य कहाँ देता है उसकी बात आपको नहीं करना है, यानी यहाँ पर ये जो उसने प्रथम स्थिति बनाई वो गुण श्रेणी रूप से है, बस इतना ही इनको कहना है। अब ज्ञानावरणादि कर्मों में गुण श्रेणी चल रही थी ना, अपूर्वकरण के पहले समय में ज्ञानावरणादि की गुण श्रेणी बनाई थी, कितनी लंबी, अपूर्वकरण प्लस अनिवृत्तिकरण प्लस सूक्ष्म सांप्राय और थोड़ा, तो वो अभी भी यहाँ जितनी गल गई ना, कितनी गल गई, अपूर्वकरण के समय जितनी गल गई, अनिवृत्तिकरण जितने समय गल गई, अभी कितनी गुण श्रेणी शेष रही, उसमें सांप्राय प्लस थोड़ा, उसमें कोई गैप वैप नहीं होने वाली है। तो ज्ञानावरणादि कर्मों की अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर गलितावशेष गुण श्रेणी, गलितावशेष जो नीचे से गलती है जो बाकी रहती है उसको गलितावशेष कहते हैं, पूर्ववत प्रवर्तती है, यह उसका प्रमाण किंचित अधिक सूक्ष्म सांप्राय काल मात्र है। वो हमने पहले देखा था जब बनाई थी तभी की बात थी, अब यहाँ कितना बचा है, सूक्ष्म सांप्राय प्लस थोड़ा, जब बनाई थी तब कितनी थी, अपूर्वकरण प्लस अनिवृत्तिकरण प्लस सूक्ष्म सांप्राय प्लस थोड़ा, अब कितनी बची है, सूक्ष्म सांप्राय प्लस थोड़ा, क्योंकि बाकी दो काल तो बीत गए। यहाँ पर उसी सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय में सूक्ष्म पृष्टि के उदय को वेदता है यानी भोगता है। अब यहाँ उदय किसका चल रहा है, सूक्ष्म पृष्टि यानी सूक्ष्म लोक का यहाँ उदय चलेगा। सूक्ष्म, अभी आगे बढ़ते 207 नंबर पेज पर, सूक्ष्म पृष्टि करने के काल के प्रथम समय में और अंत समय में की हुई पृष्टियों को देखो हमने क्या देखा था, हमने ये बोर्ड पर भी देखा था ना, हम बहुत अच्छा यहाँ पर है ना बोर्ड पर लिखा हुआ, ये सूक्ष्म सृष्टि में ये पहले समय में ये सृष्टि बनाई थी, दूसरे समय में यहाँ की सृष्टि बनाई थी, तीसरे समय में ये सृष्टि बनाई थी, ऐसे सृष्टि बना बना के नीचे अंत समय में नीचे की सृष्टि बनाई। अब ये दो तीन समय इसी में समझ लो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म सृष्टि करने के काल में, काल के प्रथम समय में और अंत समय में की हुई सृष्टियों को पल्ले के असंख्या से भाग का भाग देने पर एक भाग मात्र सृष्टियां है, वे अपने स्वरूप से उदय में नहीं आती, अन्य सृष्टि रूप परिणमन करके उदय में आती। अब यहाँ क्या कहना चाहते हो देखो, पहले समय में सृष्टि की थी वो यहाँ पर है, और वो अंतिम समय में सृष्टि की थी वो यहाँ पर है नीचे। तो अनुभव किसमें ज्यादा है किसमें कम है? नीचे में बहुत कम है और ऊपर वाला के वो बहुत अधिक है ना। तो अभी हम आपको बोर्ड पर नहीं काटे पर दिखाएं, मान लेते हैं ना ये सारी सूक्ष्म सृष्टि, अभी ये पहले समय में की, दूसरे समय में की, तीसरे समय में की, इतनी सारी की उसने सभी। तो ये नीचे की ओर तो एकदम जघन्य सृष्टिया है और ऊपर की ओर तो उत्कृष्ट सृष्टिया है। तो ना उत्कृष्ट का उदय अभी वो निषेक में ऐसी पड़ी है, वर्तमान पहले स्थिति का पहला निषेक उदय रूप है, उसमें जघन्य सृष्टि यानी अंतिम समय में की हुई सृष्टि, पहले समय में की हुई सृष्टि, उसमें सभी सृष्टि रूप से ही है, परंतु उन्हीं सृष्टियों में से जघन्य सृष्टि से लेकर उत्कृष्ट सृष्टि तक सभी सृष्टियां पड़ी है। प्रत्येक निषेक में ऐसा है, तो ये उदय रूप निषेक में भी ऐसा है। अब उसमें उदय किसका होगा, इसका होगा कि इसका होगा? तो कहते नहीं इसका होगा, नहीं इसका होगा, ना उत्कृष्ट होगा ना जघन्य का होगा, ये दोनों ही मध्यम रूप से होकर उदय में आते हैं। इसमें ऐसा कहते कि यहाँ जो पल्ले के भाग वगैरह वगैरह की बात की ना, हम अपनी भाषा में बाद में समझेंगे, तो विशिष्ट संख्या का भाग देकर इतनी कृष्टिया उदय रूप नहीं है, यहाँ की भी इतनी कृष्टिया उदय रूप नहीं है, तो क्या होगा, वो मध्यम रूप टर्न होकर उसी समय में उदय में आएगी। सेकंड समय में वहां पर भी ऐसी कृष्टिया पड़ी है, तो वहां क्या होगा, उत्कृष्ट और अनुदय रूप में चली जाएगी और जघन्य की जघन्य और इधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी उसका अनुभव जघन्य की ओर शिफ्ट होगा, दूसरे समय में उदय, तीसरे समय में ऐसे ही पड़े उत्कृष्ट और अनुदय रूप में चले जाएगी और जघन्य की ओर उदय रूप में शिफ्ट होगा, यानी उसका सब अनुभाग दसवें गुणस्थान के अंत समय में शिफ्ट होते 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 जघन्य की ओर बढ़ता चला जाएगा। ना अति जघन्य का उदय होता है, ना अति उत्कृष्ट का उदय होता है, मध्यम रूप से टर्न होकर उदय में आता है, परंतु वो जघन्य की ओर बढ़ता चला जाता है, उत्कृष्ट और कितने ही कृष्टियों का उदय रुकता चला जाता है, जघन्य की ओर कितने ही बढ़ता चला जाता है, यही सब गणित के रूप में यहाँ सब दिया जघन्य तक, यानी जघन्य की ओर तक, दोनों ओर से अति उत्कृष्ट अति जघन्य का उदय नहीं होता है, मध्यम रूप से वो टर्न होकर एक ही समय में टर्न होकर उदय में आती है, यथा योग। जैसे हम ऐसे ही भी कहते ना कि हमारे जो वर्तमान के जो उदय रूप निषेक है उसमें कभी कभी बंधे हुए, कभी तीव्र अनुभव था, मंद अनुभव था, आप लोग प्रश्न पूछते हैं उदय कैसा होगा, तो यथा योग्य वैसा जिस रूप से टर्न होकर उदय में आना है वो। अब यहाँ तो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान है और विशुद्धि जीव की तो प्रति समय अनंत गुणा बढ़ रही है और अनुभव प्रति समय अनंत गुणा घट रहा है और घटकर उदय में भी आ रहा है, तो सब जघन्य की ओर शिफ्ट होते होते उदय में आ रहा है। अब इसी की बात यहाँ थोड़ी विस्तार से समझाई है, उसको थोड़ा हम अपनी संदृष्टि में देखते हैं।
देखो जगन्य की और
यहाँ बंद होता ही नहीं मोहनी का, वो तो अंतिम बंद हो चुका लोक का, अब ये उदय रूप की बात चल रही है। यहाँ उदय है सूक्ष्म लोक का, बंद है ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, अंतराय का, साता वेदनीय का, यशस कीर्ति का, उच्च छह कर्म बंद रहे, आयु तो बनती नहीं, सातवें से ही नहीं बन रही थी और मोह बंद रहा था नौवे तक, वो भी अभी रुक गया। यहाँ बंद विच्छित हुई ना, पहले पुरुष वेद बनता था वो रुक गया, फिर संतुलन क्रोध का बंद रुक गया, मान का बंद रुक गया, फिर माया का बंद रुक गया, अभी लोभ का भी बंद रुक गया, अभी कोई मोहनीय नहीं बंधेगा। अब दसवें गुणस्थान में आया हुआ जीव है, उसका जो लोभ का उदय चल रहा है, कौन सा लोभ, सूक्ष्म लोभ, जिस अनुभव में उदय हो रहा है दूसरे समय में और हीन अनुभव का उदय होगा, तीसरे समय में और हीन अनुभव का उदय होगा, इस तरह से उसका उदय जगन्य की ओर शिफ्ट होते होते चला गया। अनंत सारी पृष्ठिया भी अनंत है, उसमें से दोनों ओर की पृष्ठियों का उसको उसका उदय रूप नहीं होगा, मध्यम रूप से उदय में आ जाएगा। वो मध्यम में भी जगन्य की ओर उनको मध्यम शिफ्ट होता चला जाएगा। देखो उसका ये जो 208 पेज निकालना, यानी दोनों ओर जो उत्कृष्ट और जगन्य जो उदय में नहीं आती है उसको अनुदय उत्कृष्ट क्या कहना, अनुदय रूप। और उसको समझाने के लिए अंक संदृष्टि उन्होंने दी है टोडरमल जी साहब ने 208 पेज पर। अंक संदृष्टि यानी उन्होंने अपनी काल्पनिक संख्या लेकर ये बात समझाने की कोशिश की है। देखो इसको अंक संदृष्टि कहते हैं, जहाँ यथार्थ में बताई जाता है उसको अर्थ संदृष्टि कहते हैं, ये अंक संदृष्टि है। जैसे सर्व पृष्ठियों का प्रमाण 1000, यानी अभी जो वर्तमान उदय रूप निषेक है हमने बताया उसमें पृष्ठियाँ कितनी हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000, 1000 पृष्ठियाँ हैं पहले उदय रूप निषेक में। उसको पल्ले के असंख्यात भाग का प्रमाण 5, वहाँ यथार्थ में पल्ले के असंख्या पे भाग का भाग दे देते, हमने 5 का भाग दे दिया। उसका भाग देने पर बहुभाग मात्र 800 बीच की पृष्ठियाँ हैं। 1000 को 5 का भाग दिया कितना है, 200 ये एक भाग हुआ, तो 1000 में से एक भाग 200 कम किया तो बहुभाग कितना हुआ, 800। तो यहाँ बीच वाली 800 पृष्ठियाँ उदय होगी और दोनों ओर की मिलकर 200 पृष्ठियां अनुदय रूप है, इधर की और इधर की मिलकर। तो इधर की कितनी लेना, इधर की कितनी लेना, उसका उसका भी बताएंगे ना। बीच में 800 उदय रूप है, तो अनुदय रूप उत्कृष्ट ओर कितने किसको अनुदय रखना, यहाँ कितना देखना, वो बात बता रहे हैं। तो कहते हैं 800 बीच की पृष्ठियाँ वे तो अपने रूप से उदय में आती है, सबका मिलकर जो एग्रीगेट मिलेगा रिजल्ट उतना मिलेगा। एक भाग 200 उसको 5 का भाग देकर एक भाग 40 जुदा स्थापित कर अवशेष 160 के दो भाग करने पर एक भाग 80 तो अंत समय में की हुई पृष्ठियों के जघन्य पृष्ठी से लेकर जो नीचे की पृष्ठियाँ हैं वे अनुदय रूप। क्या क्या उन्होंने 200 डिवाइडेड बाय 5 40 आ गए, 40 को अलग रखा तो 160 हुए, 160 के दो भाग किए 80-80, तो दोनों ओर 80-80 रखे उन्होंने। तो कहते 80 को अंत समय में की हुई पृष्ठियों के जघन्य पृष्ठि से लेकर, ये जो 80 ये जघन्य पृष्ठि है और ये वो ये पहले समय में की थी उत्कृष्ट पृष्टि है, ये जगन्य ने अंतिम समय में की थी ये जगन्य पृष्टि है। यहाँ से 80 पृष्ठियाँ यहाँ थी, टोटल हमने 1000 देखी थी, उसमें से यहाँ से 80 छोड़ दो जो अनुदय रूप हो, अब वो अनुदय रूप है। इनके परमाणु अनुभाग बढ़ने से बीच की पृष्ठियों रूप परिणमित होकर उदय में आते हैं। अब दूसरे जुदे रखे एक भाग 80, हमने दोनों ओर क्या किया था, 200 अनुदय है तो 200 को 5 का भाग दिया था तो उत्तर आया था 40, 40 को अलग रखो तो 160 हुए, 160 के दो भाग किए यहाँ 80 और यहाँ 80, तो यहाँ तो 80 अनुदय रूप है और यहाँ के 80 में वो 40 मिला था, यानी 120 यहाँ के अनुदय रूप है। 1000 पृष्ठियों में से बीच के 800 पृष्ठियाँ उदय रूप है, अनुदय रूप 200 है तो 200 में से जगन्य की ओर के 80 पृष्ठियाँ अनुदय रूप है, उत्कृष्ट की ओर से 120 पृष्ठियाँ अनुदय रूप, ये उसका अर्थ होता है। इतना इसमें पहले समय की बात है, पहले समय की बात समय, ये फिगर तो ख्याल में आती है ना। तो उनका क्या होता है, अनुदय रूप है ना, क्या पढ़े रहते सप्ताह में, नहीं ये बीच वाले यानी मध्यम अनुभाग रूप होकर उदय में आए, अपने रूप से उदय में नहीं आए। जघन्य की ओर की भी अपने रूप से, यहाँ की 80 अपने रूप से उदय में नहीं आएगी, अनुभाग बढ़कर मध्यम रूप से उदय में आएगी। ये अति उत्कृष्ट अनुभाग वाली 120 पृष्ठियाँ हैं इनका अनुभव घटकर मध्यम रूप से उदय है, ये उसका अर्थ है। अब दूसरे समय में क्या होता है वो देखेंगे। इसी तरह यथार्थ कथन समझना, ये तो उन्होंने समझाने के लिए फिगर लेके समझाएंगे। अब आगे देखते हैं 298 की टीका। सूक्ष्म सांप्राय के द्वितीय समय में जो प्रथम समय में उदय रूप पृष्ठिया है उनकी अंत पृष्ठि से लेकर पृष्ठियों को छोड़ते हैं, उदय को प्राप्त नहीं करते, उनका प्रमाण प्रथम समय में हीन शक्ति रूप होने योग्य जो ऊपर की पृष्ठिया अनुदय रूप कही थी, ये हमने 120 पृष्ठिया अनुदय रूप ऊपर के हैं अधिक अनुभव वाली अनुदय रूप 120 पृष्ठिया थी, उनके प्रमाण को यानी 120 को पल्ले के असंख्यात भाग कहें 5 का भाग देकर एक भाग मात्र जानना। इतनी नवीन ऊपर की पृष्ठिया यहाँ उदय रूप नहीं होती, यहाँ 120 पृष्ठिया अनुदय रूप की, उसको 5 का भाग दिया तो 24 आ गए, इसके और 100 अनुदय रूप में चली जाएगी। पहले 120 अनुदय थी उसमें 24 और उत्कृष्ट की ओर के और 24 अनुदय रूप में चली जाएगी, उदय रूप नहीं होती। इतनी नवीन ऊपर की पृष्ठिया यहाँ उदय रूप नहीं होती, ये पृष्ठिया अनंत गुणा घटते अनुभाग रूप परिणमित होकर अन्य नीचे की पृष्ठि रूप परिणमित होकर उदय में आती है, यानी पहली वाली 120 प्लस इन एक्स्ट्रा और 24 ये सब दूसरे समय में इनका अनुभाग घटकर मध्यम रूप होकर उदय में आएगा, ये दूसरे समय की बात है। अब जगन्य की ओर की बात देख रहे हैं। अन्य प्रकार से प्रति समय उदय रूप पृष्ठियों का अनंत गुणा शक्तियों का घटना नहीं बनता, पुनश्च प्रथम समय में अनंत गुणा बढ़कर शक्ति रूप परिणमने योग्य जो अधस्तन अनुदय रूप पृष्ठिया है, इसका अर्थ क्या है, पहले समय में जो नीचे की 80 पृष्ठिया उनका अनुभाग बढ़कर उदय में आता था उसमें क्या होती है, दूसरे समय में उनमें क्या पोजीशन होती है उसकी बात करता है, उनको भी उसी का भाग देना यानी 5 का अपनी भाषा में, वहाँ एक भाग प्रमाण नीचे की नवीन पृष्ठिया जो प्रथम समय में उदय रूप नहीं थी वे उदय रूप होती है। पहले समय में क्या पोजीशन थी, यहाँ की 80 और यहाँ के 120 उदय रूप नहीं थी, 120 का अनुभाग घटकर उदय में आता था, 80 का अनुभाग बढ़कर उदय में आता। सेकंड समय में 120 प्लस 24 इनका उदय नहीं होगा, सबका अनुभाग घटकर उदय में आएगा, यहाँ 80 अनुदय रूप थी उसमें से 16 इधर चली जाएगी, यानी 80 के बदले उसमें से 16 कम कर दो 64 ही अनुदय रूप हो जाएगी, यानी वो यहाँ 80 अनुदय रूप थी ना, अब यानी उदय रूप हो जाएगी, यानी जगन्य की ओर ये शिफ्ट हो रहा है, जगन्य की ओर के कुछ उदय रूप हो जाएगी, जो 16 पहले समय में अनुदय थी वो उदय रूप हो जाएगी, यहाँ जो पहले समय में उत्कृष्ट ओर की उदय रूप थी वो अनुदय रूप हो जाएगी, ऐसा ही हर समय चलेगा। तीसरे समय में जगन्य की ओर अनुदय वाली और उदय रूप होती चली जाएगी और उत्कृष्ट की ओर की और अनुदय रूप में चली जाएगी, यानी मेरी भाषा में वो उसका जगन्य की ओर उसका शिफ्टिंग चलेगा, उत्कृष्ट ओर की बहुत सारी पृष्ठ अनुदय 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 रूप होती चली जाएगी और यहाँ जगन्य की ओर उदय रूप होती चली जाएगी, प्रति समय ऐसा होता चलेगा, ये उसका अर्थ है। यानी वो मध्यम पृष्ठ रूप से उदय में आती, ये उसका यहाँ समझना। पेज नंबर 210 निकालना। ये जो नीचे सेकंड ये जो नया पैराग्राफ है ना उसी उसकी चौथी लाइन, इसी तरह सूक्ष्म सांप्राय के तृतीय आदि समय तक आदि अंत समय तक, यानी पहले समय से दूसरे समय में उससे तीसरे उससे चौथे अंत समय तक विशेष घटते क्रम सहित कृष्टियों का उदय क्रम से जानना। अब ये समझने में आसान है, अति उत्कृष्ट कृष्टियों में भी जो उत्कृष्ट कृष्टिया कृष्टिया इससे वर्गना के अनंत विभाग प्रमाण थी, फिर उसमें भी जो उत्कृष्ट अनुभाग वाले थे वो अनुदय रूप में चली चली जाती है और जगन्य की ओर का उदय रूप होती चली जाती है, ये सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय तक। उसका अर्थ क्या है, सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थान जो इतना अंतर्मुक्त है उसके प्रति समय अनुभाव का उदय घटता 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 चला जाएगा अंत समय ये प्रति समय घटना हो रहा है। अभी उसी को उन्होंने उसके पल्ले के असंख्यात विभाग वगैरह उसके भाषा में बताया है। अभी ये जो सूक्ष्म पृष्टि का उदय हुआ उस समय और क्या कार्य हो रहा है, तो जो नव समय प्रबद्ध था बादल लोक का वो भी उपशमित होने का कार्य चल रहा है। आप कहेंगे वो उपशमित हो क्यों होता है, एक अवली के बाद उदय में क्यों नहीं आता है? बोलो, छह अवली बाद उदीर्ण होने का नियम है ना, तो उदीर्ण होने का चांस ही नहीं, उसके लिए छह अवली रखती है तो सेकंड अवली में तो उसका उपशम हो जाता है। अपने बंधने के बंधावली के बाद हमने देखा था नवक समय प्रबद्ध का उपशम कितने काल में होता है, एक समय कम दो अवली में अपने बंध समय से लेकर, यानी उतने काल में तो उसका उपशम हो चुका है, क्योंकि उदीर्ण होने के लिए छह अवली का हमने नियम बताया था, इसलिए वो वहाँ उसकी उदीर्ण वगैरह कुछ नहीं होती। तो ये जो उसका उपशम किसका होता है, नवक समय प्रबद्ध का, पेज नंबर 210 नीचे से चौथी लाइन देखो, यहाँ तो सूक्ष्म कृष्टियों के द्रव्य को भी उपशम आता है, वो 999 की पहली लाइन से वही बताया है, मैं अपनी भाषा में बताती हूँ। अब ये दसवें गुणस्थान शुरू हुआ है, सूक्ष्म सांप्राय का उदय भी चल रहा है और द्वितीय स्थिति में सूक्ष्म सांप्राय का द्रव्य भी पड़ा हुआ है, क्योंकि सूक्ष्म कृष्टि सब पूरी के पूरी नीचे नहीं आई है, द्वितीय स्थिति में पड़ी थी ना, तो उसका क्या होगा, उसमें से कुछ द्रव्य नीचे आकर पहली स्थिति बनी थी, बाकी तो ऊपर सूक्ष्म कृष्टि रूप से पड़ी है, तो उस सूक्ष्म कृष्टि को उपशमने का कार्य होगा। जितने सूक्ष्म कृष्टि का द्रव्य है, पहले समय में एक फाली उपशमित हुई, दूसरे समय में दूसरी फाली उपशमित हुई, इस तरह से वहां उपशमने का कार्य हर समय चलेगा। कब तक? सूक्ष्म सांप्रदाय के अंत तक चलेगा, और बाय दैट टाइम यहाँ सूक्ष्म कृष्टि का उदय भी चलता रहेगा, और वो पहले एक समय कम दो अवली काल में नवक समय प्रबद्ध जो था बादर लोक का वो भी उपशमित हो जाएगा। ये सभी कार्य एट ए टाइम सब चल रहे हैं, यानी ये पहली चार पांच लाइन में यही बताया है कि सूक्ष्म सांप्रदाय के काल में वो सूक्ष्म कृष्टि का द्रव्य उपशमता चला जाता है, अंतिम फाली तक उसका उपशम होता है। और दूसरी क्या बात है नीचे से चौथी लाइन में, एक समय कम दो अवली मात्र संज्वलन लोक के यानी मादर लोक के नवक समय प्रबद्ध उपशमित नहीं हुए थे, क्योंकि वो लास्ट लास्ट में बंधे थे, उनके द्रव्य को सूक्ष्म सांप्रदाय के प्रथम समय से लेकर प्रति समय असंख्यात गुणा क्रम सहित उपशम आता है, उसकी कृष्टि वृष्टि नहीं बनाते, उसके तो उसी रूप से उपशमाने का कार्य चलता है। सूक्ष्म सांप्रदाय के अंत में आयु और मोह बिना छह कर्मों का जघन्य स्थिति बंध होता है। आयु और मोह बिना कौन से कर्म बनते हैं? ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है, तीन घाती है और तीन आघाती है, कौन से? वेदनीय नाम और गोत्र। नाम में एक यशस कीर्ति बन रही है, गोत्र में उच्च गोत्र बन रहा है, तो यहाँ ये प्रकृतियां बन रही है। मोह का बंध तो ऑलरेडी रुका था कब का, और ये जो बंधने वाली थी उनका भी मिनिमम बंध स्थिति बंध, इसके आगे स्थिति बंध नहीं होने वाला। ग्यारहवें गुणस्थान में तो केवल साता वेदनी बंधेगी, वो एक समय वाली आएगी और चली जाएगी, स्थिति बंध नहीं होगा। स्थिति बंध तो कषाय से ही होता है और कषाय दसवें तक ही है, इसलिए यहाँ तक इन कर्मों में स्थिति बंध होगा, मोहनीय तो बंधेगा ही नहीं, और इनका स्थिति बंध भी घटते घटते अंतिम स्थिति बंध, मिनिमम स्थिति बंध, मिनिमम उपशम श्रेणी के लिए मिनिमम, इसका भी आधा क्षपक श्रेणी में हो जाएगा अंत में, सूक्ष्म सांप्रदाय के अंत में। तो यहाँ पर उनका कितना होता है उसकी बात यहाँ बता रहे, पेज नंबर 211 में।
समय में तो समय लिखा जाएगा।
हाँ, सूक्ष्म सांप्रदाय के अंत समय में, अंत समय में हमें लिखना, अंत समय में तो इतना ही होगा, परंतु अंतिम स्थिति बंध इतना होगा, अंत में इतना स्थिति बंध होगा। अंत में कहने से अंतिम अंतर्मुहूर्त में ऐसा भी उसका अर्थ लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी चरम में ऐसा लिखा है ना, उपशमय चरमे अवर स्थिति बंधनम षण्णा वर यानी उत्कृष्ट अवर यानी जघन्य स्थितिबंध होता है। छह कर्मों का जघन्य स्थितिबंध होता है। इन्हें ढुंढारी में समय समय शब्द डाला था परंतु उसकी हम उसको अंतिम स्थिति बंध इतना समझेंगे वो कितना होता है और क्या होता है दूसरे दोपहर में देखेंगे। बोलो चौबीसों दोपहर।